नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबका साथ सबका विकास, जन आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। युवा कार्य और खेल मंत्रालय आज दिल्ली में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा। ईरान ने आयतुल्ला अली खामनेई के पुत्र मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित किया। और नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह का अगला प्रधानमंत्री बनना तय। अब समाचार विस्तार से। भारत ने तीसरी बार आईसीसी T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। एक रिपोर्ट।
ये जीत नहीं है, आज इतिहास देने खड़े होके ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने तीन बार इस ट्रॉफी को उठाया है। हर जगह, चारों दिशाओं में गूंज रहा है एक ही नाम, चमक रहा है हिंदुस्तान।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत न्यूजीलैंड को मात देकर फिर से चैंपियन बन गया। इसके साथ ही भारत T20 विश्व कप तीसरी बार जीतने वाला पहला देश भी बन गया है। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 256 रन का विशाल लक्ष्य दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में केवल 159 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत T20 वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार जीतने वाला देश भी बन गया है। भारत की गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने केवल 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वहीं अक्षर पटेल ने 27 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच और संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को तीन बार विश्व कप जीतने वाला एकमात्र देश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है और भारतीय क्रिकेट टीम लगातार दो बार कप जीतने वाली एकमात्र टीम भी बन गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि फाइनल में ऐतिहासिक विजय देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उल्लेखनीय जीत असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम भावना का प्रतीक है। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण खेल का प्रदर्शन किया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ये चरण अगले महीने की 2 तारीख तक चलेगा। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कांग्रेस के 3 सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि ये प्रस्ताव रखेंगे। यदि आज लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो श्री ओम बिरला सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे और सदस्यों के साथ बैठेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष को हटाने संबंधी नोटिस लोकसभा महासचिव को दिया था। नोटिस में विपक्ष ने श्री बिरला पर सदन में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इस नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, वाम दलों और अन्य दलों के कुल 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें मंगलवार तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबका साथ सबका विकास, जन आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट पश्चात वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस विषय के तहत शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य और आयुष, पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न सेक्टर पर देशभर में कई सत्र आयोजित होंगे। एक रिपोर्ट।
विचार विमर्श में शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट तथा विरासत पर्यटक को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। बजट पश्चात वेबिनार सरकार, उद्योग और क्षेत्र विशेषज्ञों को बजट में प्रस्तुत नीतिगत दृष्टिकोण और कार्यात्मक रणनीति में बदलने पर चर्चा का मंच उपलब्ध कराएगा। इस विचार विमर्श से ऐसे व्यवहारिक सुझाव मिलने की आशा है जिससे नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन आसान होगा तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि और विकास की गति तेज होगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अमीषा।
युवा कार्य और खेल मंत्रालय आज दिल्ली में विकसित भारत युवा संपर्क कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा। ये पहल मेरा युवा भारत के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने में युवाओं की सहभागिता मजबूत करना है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय राजधानी के 35 से अधिक कॉलेजों के 10,000 से ज्यादा छात्रों के विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में इंटरैक्टिव सत्र, संवाद और कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनका उद्देश्य युवाओं को भारत की विकास यात्रा से जोड़ना और उन्हें जिम्मेदार राष्ट्र निर्माता बनने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में युवा आइकॉन भी छात्रों से बातचीत करेंगे। ये युवा अपने अनुभव साझा करेंगे और छात्रों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेंगे। यह पहल अब तक देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 274 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक पहुंच चुकी है। इसके माध्यम से करीब 20,000 से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा चुका है। कार्यक्रम में पंजीकरण और भागीदारी MY भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कराई जा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और इसराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान ने अपने नए सर्वोच्च नेता के नाम की घोषणा कर दी है। मीडिया की खबरों के अनुसार मुश्तबा खामनेई अपने पिता आयतुल्ला अली खामनेई का स्थान लेंगे, जिनकी मौत अमेरिका और इसराइल के शुरुआती हमले में तेहरान में हो गई थी। इसराइल ने पहले ही धमकी दी है कि आयतुल्ला अली खामनेई ने किसी भी उत्तराधिकारी को निशाना बनाया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल के लगातार हवाई हमलों का उद्देश्य ईरान की मिसाइल क्षमता और प्रमुख नेतृत्व संरचनाओं को नष्ट करना रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों सहित क्षेत्रीय ठिकानों पर हमलों से जवाब दिया है, जिससे पश्चिम एशिया में संकट और भी गहरा गया है। तेहरान में रात होते ही इसराइली हमले फिर से शुरू हो गए और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के बाद राजधानी धुएं से घिरी है। अमरीकी सेना ने ईरान के नागरिकों के घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। समुद्री स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अधिकांश वाणिज्यिक जहाजों के लिए लगभग बंद हैं। इस जोखिम के कारण जहाजों की आवाजाही में 80% की गिरावट आई है। प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने आवागमन निलंबित कर दिया है। इससे वैकल्पिक लॉजिस्टिक नेटवर्क को वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ रही है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के साथ जारी युद्ध में 7वें अमरीकी सैनिक की मृत्यु हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका के केंद्रीय कमान ने ईरान के हमलों में घायल एक अमरीकी सैनिक के कल रात निधन की पुष्टि की। इस बीच इसराइली रक्षा बलों ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के वायु सेना मुख्यालय पर हमला किया। उधर सऊदी अरब ने शेबा तेल क्षेत्र को निशाना बनाने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी निवासियों को निकटतम इस बात की जानकारी दी। तेल की कीमतें पिछले 3.5 वर्ष में पहली बार $100 प्रति बैरल को पार कर गई है। मध्य पूर्व में ईरान युद्ध के कारण तेल का उत्पादन और परिवहन बाधित हुआ है। एक बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कल $101.19 तक पहुंच गई। नागर विमानन मंत्रालय पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। क्षेत्र में संघर्ष के कारण भारत और पश्चिम एशिया के बीच हवाई यात्रा पर असर पड़ा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू विमान सेवा सुनिश्चित करने के लिए विमानन कंपनियां वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक परिचालन कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार भारतीय विमानन कंपनियां आज 50 उड़ानें संचालित करेंगी। पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति के कारण कई क्षेत्रों में विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। यात्रियों को विमान कंपनियों से जारी नवीनतम जानकारी पर नजर रखने का परामर्श दिया गया है। उड़ानों की अद्यतन जानकारी के लिए मंत्रालय के यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष से हेल्पलाइन नंबर 011-24604-283 और 011-24632987 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आज एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। इसमें हजारों सैनिक भाग ले रहे हैं। ये अभ्यास अमेरिका के पश्चिम एशिया युद्ध में शामिल रहने के दौरान हो रहा है। दक्षिण कोरिया के संयुक्त सेना प्रमुख ने बताया कि फ्रीडम शील्ड अभ्यास में लगभग 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक भाग लेंगे। ये अभ्यास 19 मार्च तक चलेगा। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता और पिछले वर्ष सितंबर में जेनजी आंदोलन के प्रमुख चेहरे बालेंद्र शाह का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। उनकी पार्टी ने संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की है। पार्टी को प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष चुनाव वाली 165 सीटों में से 122 सीटें मिली हैं और 3 सीटों पर वो आगे चल रही है। नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद ये सबसे बड़ा चुनावी बहुमत है। चुनाव आयोग ने अब तक 165 सीटों में से 159 के परिणामों की घोषणा कर दी है। अंतिम चुनाव परिणाम अगले दिनों आने की संभावना है। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचित सीटें भी शामिल होंगी। 35 वर्षीय बालेंद्र शाह ने 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों से हराया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की पहल और योजनाओं पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा के दौरान श्रोता अपनी जिज्ञासा सामने रख सकते हैं और प्रश्न भी विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर के पूल बी के दूसरे मैच में आज भारत का सामना स्कॉटलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम ने कल उरुग्वे पर 4-0 की शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी बंगाल के गंगा क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, सिक्किम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना जताई है। तटवर्ती आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। उधर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अगले 2 दिन के दौरान लू चलने का अनुमान है। गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज गर्म और उमस भरा दिन रहने की उम्मीद है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा दूसरी बार T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, हमसा कोई नहीं। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीता। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एक साल पहले मार्च में रविवार के दिन ही न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। राजस्थान पत्रिका ने हिस्ट्री रिपीट हिस्ट्री डिफीट शीर्षक से खबर दी है। अपने घर में खिताब जीतने वाली पहली टीम भारत लगातार दूसरी बार बना T20 चैंपियन। खाड़ी देशों में अब पीने के पानी के खतरे, मिसाइल और ड्रोन हमलों से जल शोधन संयंत्र भी निशाने पर आने की आशंका, ये दैनिक जागरण की खबर है। अमर उजाला ने ईरान इजराइल युद्ध पर खबर दी है, इजरायली हमले में ईरान के 4 तेल डिपो तबाह, तेहरान ने यूएई पर दागी 16 मिसाइलें और 117 ड्रोन। हिंदुस्तान लिखता है, ईरान की सड़कों पर आग का दरिया, आसमां स्याह। लोकसत्ते ने कारोबार पन्ने पर खबर दी है, अमरीका इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में शेयर बाजारों पर दिखेगा पश्चिम एशिया का असर। लगातार बढ़ रहे गर्मी के सितम से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं, रविवार के दिन भी हवा रही खराब, ये है नवभारत टाइम्स की खबर। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर जीवाणुओं पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, विकास के सफर में सूक्ष्म जीवों का साथ। पत्र लिखता है, देश में आज भी सड़कें, पुल, उद्योग और निवेश के आंकड़े मुख्य रूप से प्रगति के पैमाने हैं। ऐसे समय में केरल ने एक जीवाणु को आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है, जिससे विज्ञान को नीति और समाज के बीच सेतु बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
धन्यवाद मुनीश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार ICC T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से, लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबका साथ सबका विकास, जन आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। युवा कार्य और खेल मंत्रालय आज दिल्ली में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा। ईरान ने आयतुल्ला अली खामनेई के पुत्र मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित किया। और नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह का अगला प्रधानमंत्री बनना तय। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।